पृष्ठ संख्या 82, अध्याय 10, राग कौशिक कान्हड़ा। जिस भांति हमारे ऋषि मुनि भगवान विष्णु के विविध स्वरूपों के वर्णन में अपने को असमर्थ समझकर अंत में अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे कहकर नमस्कार कर लेते थे, उसी प्रकार यहाँ राग कौशिक कान्हड़ा के विविध स्वरूप को देखकर इसे भी अनेक रूप रूपाए कहकर नमस्कार करना पड़ता है, क्योंकि प्रचार में यह राग अनेक तरह से गाया बजाया जाता है। प्रस्तुत राग के संबंध में यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि उत्तर भारत के संगीत क्षेत्र में जितने भी गायन तथा वादन शैली के प्रवर्तक घराने हैं, केवल उतने ही प्रकार से नहीं, प्रत्युत जितने गायक व वादक हैं, उतने ही प्रकार से इसे गाते बजाते हैं। यद्यपि किसी एक राग का इस प्रकार का अनेक स्वरूप राग का अति प्राचीनता को स्पष्ट करता है, परंतु इस भांति स्वरूप की विविधता में भी कतिपय ठोस आधार होता है। प्रस्तुत राग में यह आधार बागेश्री और मालकौंस अंग है। इस राग के जितने भी स्वरूप हैं, इन्हीं दो अंगों से संबंधित हैं। अब यहाँ सर्वप्रथम यह विचारणीय है कि इन दोनों अंगों के कौशिक कान्हड़ा के प्रकारों में कौन सा स्वरूप अधिक उपयुक्त, प्राचीन तथा आकर्षक है। जहाँ तक काफी थार जन्य बागेश्री अंग के कौशिक कान्हड़ा का प्रश्न है, यह अब प्रचार में नहीं के बराबर है। यह इसके स्वरूप का अनाकर्षक होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रचार में ऐसे अनेक राग हैं जिनमें पर्याप्त माधुर्य न होने के कारण संगीत समाज ने उन्हें विस्मृत सा कर दिया है। उदाहरणार्थ राग भंखार व दरबारी तोड़ी आदि रागों को ले सकते हैं। ये राग प्रचार में नहीं के बराबर हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके स्वरूप क्लिष्ट यानी कठिन हैं, इस कारण इन्हें प्रचार में प्रमुखता नहीं मिली है, प्रत्युत स्वरूप में माधुर्य न होने के कारण ये राग स्वयं संगीत समाज में अपना प्रमुख स्थान नहीं बना सके। इसके विपरीत दरबारी, मियां मल्हार, बिलास खानी तोड़ी इत्यादि राग कठिन होने पर भी संगीत समाज में अपना अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख स्थान रखते हैं। संगीत समाज इसके स्वरूप की दुरूहता के बावजूद भी इसे अपनी अमूल्य निधि समझकर सैकड़ों वर्षों से अपने में संजो कर रखे हुए हैं। यह स्वरूप के उत्कृष्ट होने का मूर्तमंत उदाहरण है। इसी प्रकार मालकौंस अंग के कौशिक कान्हड़ा को भी समझना चाहिए, परंतु जहाँ तक बागेश्री अंग के कौशिक कान्हड़ा का प्रश्न है, यह भी भंखार और दरबारी तोड़ी इत्यादि रागों की भांति माधुर्य की कमी के कारण समाज के चित्त का रंजन करने में असमर्थ रहा है। अब प्रश्न उठता है इन दोनों प्रकारों की प्राचीनता का। इस कसौटी पर भी मालकौंस अंग का कौशिक कान्हड़ा ही खरा उतरता है, क्योंकि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसे मालकौंस अंग का ही राग मानना चाहिए, क्योंकि कौशिक, कौशिक या कौंस तथा कौंसी और मालकौंस इत्यादि नाम मालकौंस से संबंधित हैं, जो कि अति प्राचीन है। इस प्रकार प्रस्तुत राग बागेश्री अंग की अपेक्षा मालकौंस अंग का ही अति प्राचीन होना सिद्ध होता है। पृष्ठ संख्या 83। तीसरी बात यह है कि इन दोनों प्रकारों में से किसका स्वरूप अधिक स्वतंत्र है, इसके संबंध में हम यही कहेंगे, ये दोनों प्रकार प्रचार के रागों से स्वतंत्र हैं। बागेश्री अंग के कौशिक कान्हड़ा का स्वरूप इस प्रकार है। प ध म प ध कोमल ग, म प कोमल ग अ, म रे ए सा, रे मंद्र कोमल नी सा, कोमल ग म रे सा ध ध कोमल नी प, ध कोमल नी तार रे तार सा, ध कोमल नी ध प, म प ध म, प कोमल ग म रे सा, मंद्र कोमल नी सा कोमल नी तार सा तार रे कोमल नी तार सा, कोमल नी प प म, ध ध ध कोमल नी प ध, कोमल नी तार रे तार सा, ध म प ध म, प म प प ध कोमल ग म रे सा। उपरोक्त बागेश्री अंग के प्रकार के स्वर विस्तार में एक बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें कौन सी अर्थात मालकौंस अंग कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता, जो कि कौशिक या कौन सी कान्हड़ा के लिए परमावश्यक है। हाँ, उपरोक्त स्वर विस्तार को कान्हड़े का एक प्रकार अवश्य कहेंगे, परंतु कौन सी कान्हड़े का प्रकार कदापि नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कौन सी का कोई लक्षण ही नहीं है। अब तक जो लोग इसे कौन सी कान्हड़ा कहते चले आए हैं, वह हिंदुस्तान भेड़िया धसान की कहावत को चरितार्थ करते आए हैं। इस हेतु मेरे विचार से कौशिक कान्हड़ा को केवल मालकौंस अंग से मानना व तदनुरूप इसके गायन वादन में स्वर संगति का प्रयोग करना सत्य के पक्ष को प्रोत्साहन देना है। मेरे विचार से तो उपरोक्त कान्हड़े के स्वरूप को कौन सी कान्हड़ा का प्रकार न मानकर केवल कान्हड़ा का एक अन्य प्रकार और मालकौंस अंग के ही स्वरूप को कौसी कान्हड़ा मानना चाहिए। हम इसी स्वरूप का यहाँ विस्तार से वर्णन करेंगे, जो भविष्य के संगीत साधकों के लिए उपयोगी होगा। पृष्ठ संख्या 84। प्रस्तुत राग के नाम को लेकर भी प्रचार में काफी मतभेद है। प्रचार में इस राग को कौशिक या कौशिकी व कौनसी तथा कौशिक कान्हड़ा व कौनसी कान्हड़ा आदि अनेक नाम से संबोधित करते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि कौशिक या कौशिकी तथा कौनसी को कान्हड़ा का प्रकार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि राग कौशिक के लिए ऐसा कहा हुआ है, यथा मंदरनी सा म ग म प ग म कोमल ग रे सा मौधनी च सह निध मध निध म प ग म ग रे पुनश्च सह कर्णाटः कौशिकाख्यातो निशिते मध्यमांशकः अभिनव राग मंजरी। उपरोक्त आधार पर इसका आरोह अवरोह तथा विस्तार इस भांति बनेगा, यथा आरोह मंत्र कोमल नी सा कोमल ग म, प कोमल ग म, कोमल ध कोमल नी तार सा, अवरोह तार सा कोमल नी कोमल ध म, प कोमल ग म कोमल ग रे सा, विस्तार सा मंद्र कोमल नी सा मंद्र कोमल ध मंद्र कोमल नी सा कोमल ग सा कड़ियुक्त रे सा म कोमल ग म कोमल ध म, प कोमल ग म कोमल ग सा कड़ियुक्त रे सा मंद्र कोमल ध मंद्र कोमल ध मंद्र कोमल नी कोमल ग सा मंद्र कोमल ध मंत्र कोमल नी सा म कोमल ग म कोमल ध कोमल नी कोमल ध म प कोमल ग म कोमल ग सा कड़ियुक्त रे सा कोमल ग म कोमल ध कोमल नी तार सा कोमल ध कोमल नी तार सा तार रे तार सा कोमल ध कोमल नी तार सा तार कोमल ग तार रे तार सा कोमल ध कोमल नी तार सा कोमल ध कोमल नी कोमल ध म प कोमल ग म कोमल ग सा कड़ियुक्त रे सा। उपरोक्त विस्तार में प्रत्यक्ष मालकोंस और भीम पलासी का मिश्रण दिखता है। कभी कभी प कोमल ग रे कोमल ग म कोमल ग रे सा इस भांति आरोहात्मक ऋषभ राग का विशेष स्वर संगति समझकर प्रयोग करना चाहिए और राग की जाति षाडम संपूर्ण मानना चाहिए। यह तो हुआ कौनसी या कौशिक का शास्त्र आधार तथा उसके अनुरूप विस्तार। अब कौशिक कान्हड़ा के लिए इस प्रकार कहा गया है यथा कान्हड़ा मालकोश्च मिलतोत्र यथा यथम, अर्थात कान्हड़ा में मालकोंस को मिलाने से कौशिक कान्हड़ा की उत्पत्ति होती है। इसमें उपरोक्त कौनसी व कौशिक में ही कोमल ग म सा कड़ियुक्त रे सा तथा तार सा कोमल ध कोमल नी म कड़ियुक्त प म इस भांति कान्हड़ा अंग प्रयोग करने से कौशिक कान्हड़ा का स्वरूप बनता है। यही यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि कौनसी और कौनसी कान्हड़ा को दो राग माना जाए तो सुहा कान्हड़ा और नायकी कान्हड़ा में भी नायकी और सुहा को कान्हड़ा के भिन्न पृथक अस्तित्व क्यों न माना जाए। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि नायकी और सुहा कोई राग या रागांग राग नहीं है, प्रत्युत कान्हड़ा राग के मूल स्वरूप में कुछ नियमों का परिवर्तन, कुछ विशेष स्वर संगतियों का प्रयोग अथवा कुछ अन्य रागों का मिश्रण करके एक विशेष नाम रख दिया गया है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण नायकी, सुहा, सुघरई, शहाना इत्यादि हैं। परंतु कौनसी या कौशिक कान्हड़ा दो भिन्न रागांगों के प्रकार हैं, यथा कौनसी मालकौंस का प्रकार और कौनसी कान्हड़ा कान्हड़ा का प्रकार है। इस हेतु इन दोनों रागों का भिन्न होना स्वाभाविक ही है। मालकौंस के जितने भी प्रकार बनते हैं उनमें कौंस या कौनसी नाम जुड़ा होता है, यथा चंद्रकौंस, जोगकौंस, नंदकौंस, मधुकौंस इत्यादि। यहाँ कौनसी को मालकौंस का प्रकार मानकर कौनसी कान्हड़ा से भिन्न समझना ही विवेक युक्त है। इस कारण कौशिक, कौशिकी या कौनसी नाम को एक राग मानना चाहिए और कौशिक कान्हड़ा या कौनसी कान्हड़ा को एक राग मानना चाहिए। यद्यपि प्रचार में कौशिक और कौशिक कान्हड़ा के संबंध में इस प्रकार का विचार संगीत समाज में नहीं है, फिर भी मैंने लोगों के समक्ष अपना एक सुझाव रखा है। यदि पाठकगण एवं सुधी संगीत साधक इसे स्वीकार करते हैं तो ठीक है, अन्यथा मत्स्य न्याय समाज एवं संगीत क्षेत्र में व्याप्त है। जिस गायक का संगीत क्षेत्र में नाम हो जाता है वही शास्त्र का गला घोंटने लग जाता है। आम जनता तो शास्त्र को समझती नहीं, उसे तो सुनने में श्रुति मधुर गायन एवं गायक में एक चमत्कारी गुण देखने को मिलना चाहिए। इस हेतु भावी संगीत साधकों को जनता के इस अज्ञान में प्रोत्साहन का तिरस्कार करके शास्त्र एवं व्यवहार में सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। यही सच्चे साधक का कर्तव्य एवं संगीत के प्रति सच्ची निष्ठा का प्रमाण है। पृष्ठ संख्या 85। प्रस्तुत राग कौशिक कान्हड़ा आसावरी थाट से उत्पन्न होता है। इसमें गंधार, धैवत और निषाद, कोमल तथा अन्य स्वर शुद्ध हैं। मध्यमवादी व षड्ज संवादी हैं। इसकी जाति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण तथा कतिपय विद्वान इसकी जाति औडव संपूर्ण एवं अन्य कुछ विद्वान इसकी जाति षाडव संपूर्ण मानते हैं। प्रस्तुत राग का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। इसमें षड्ज व मध्यम न्यास के स्वर हैं एवं यह उत्तरांग प्रधान राग है। प्रस्तुत राग के संबंध में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि कान्हड़े का प्रकार होते हुए भी यह आसावरी थाट जन्य है एवं मालकौंस अंग से गाया जाता है। कुछ राग प्रचार में ऐसे हैं जिनका थाट, रागांग तथा प्रकार तीनों एक ही राग से संबंधित है, यथा शुद्ध कल्याण, देवगिरी बिलावल इत्यादि। दूसरी ओर कुछ ऐसे राग हैं जिनका थाट तो एक है परंतु रागांग व प्रकार किसी एक दूसरे प्रकार के हैं, यथा दरबारी कान्हड़ा, अड़ाना इत्यादि। इनका थाट तो आसावरी है परंतु रागांग की प्रधानता व प्रकार कान्हड़ा का है। परंतु प्रस्तुत कौशिक कान्हड़ा राग में थाट, रागांग तथा प्रकार तीनों भिन्न भिन्न रागों से संबंधित है, अर्थात थाट आसावरी होते हुए भी गाया जाता है मालकौंस अंग से परंतु प्रकार कान्हड़े का है। इस प्रकार का अनूठा राग शायद ही प्रचार में कोई दृष्टव्य हो जिसमें इतनी विषमता हो, साथ ही साथ वह एक उच्च कोटि का श्रुति मधुर राग भी हो। पृष्ठ संख्या 86। जहाँ तक प्रस्तुत राग में मिश्रित रागों का प्रश्न है, स्पष्ट है कि मालकौंस में कान्हड़ा का मिश्रण करके इस राग की रचना की गई है, यथा सा मंद्र कोमल नी सा, मंद्र कोमल ध मंद्र कोमल नी सा, मंद्र कोमल नी कोमल ग सा, मंद्र कोमल ध मंद्र कोमल नी रे, रे सा रे कोमल ग अ रे सा, मंद्र कोमल ध अ मंद्र कोमल नी कोमल ग सा, कोमल ध कोमल नी सा म, म कोमल ग म अ म सा कड़ियुक्त रे सा, मंद्र कोमल नी कोमल ग सा, मंद्र कोमल नी सा कोमल ग म प कोमल ग म कोमल ग म, कोमल ध कोमल नी तार सा, कोमल ध कोमल नी म कड़युक्त प म अथवा तार सा कोमल ध कोमल नी कोमल ध म प कोमल ग म सा कोमल ग म सा कड़युक्त रे सा। इस प्रकार पंचम और ऋषभ केवल कान्हड़ा का द्योतक है परंतु गंधार दोनों अंगों की पूर्ति करता है। जब गंधार को आंदोलित करते हैं तो कान्हड़ा और मींड युक्त करने पर मालकौंस का गंधार दिखता है, यथा म कड़युक्त कोमल ग अ म सा कड़युक्त रे सा कान्हड़ा और कोमल ग से मींड लेकर सा। इस प्रकार गंधार मालकौंस अंग का है। अन्य स्वरों का प्रयोग मालकौंस अंग से होता है। अधिकतर राग के आरोह में मालकौंस और अवरोह में कान्हड़ा दिखाया जाता है, यथा सा कोमल ग म कोमल ध म कोमल ग म सा कड़युक्त रे सा, कोमल ध म कोमल ध कोमल नी तार सा, यहाँ अवरोह में भी तार सा कोमल ध कोमल नी कोमल ध म इस भांति मालकौंस दिखाया जाता है। कभी कदाचित तार सा कोमल ध कोमल नी म कड़युक्त प म इस प्रकार कान्हड़ा अंग दिखाया जाता है, परंतु तानों में स्वरों का प्रयोग इस प्रकार होता है। तार सा कोमल नी कोमल ध प म कोमल ग म कोमल ध कोमल नी तार सा आलाप के अंत में कभी कभी कोमल ध म प कोमल ग रे कोमल ग म सा कड़युक्त रे सा व द्रुत तान में तार सा कोमल नी कोमल ध प म कोमल ग रे कोमल ग म कोमल ग रे सा इस प्रकार ऋषभ का आरोह में प्रयोग करते हैं, परंतु आलाप एवं द्रुत तानों की समाप्ति कान्हड़ा अंग से ही करनी चाहिए। द्रुत तानों में यदा कदा म कोमल ग रे सा का भी प्रयोग हो जाया करता है, जो द्रुत गति में होने के कारण विसंगति उत्पन्न नहीं करता है। प्रस्तुत राग के अवरोह में ऋषभ की अवहेलना अर्थात म कोमल ग सा अंग का प्रयोग और आरोह में पंचम का प्रयोग अर्थात प कोमल ध कोमल नी तार सा की चलन तथा पंचम पर न्यास करना राग गोपिका बसंत का आवाहन करता है, इसलिए इससे बचते रहना चाहिए। प्रचार में इसकी जाति संबंधी जो मतभेद है उसके संबंध में मैं यही कहूँगा कि जो लोग इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण मानते हैं यह राग के अनुकूल नहीं दिखता, क्योंकि आरोह में पंचम का प्रयोग गोपिका बसंत का लक्षण उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त जो लोग इसकी जाति औडव संपूर्ण मानते हैं यह भी प्रचार के अनुकूल नहीं है, क्योंकि प्रचार में इसके विस्तार में म कोमल ग रे कोमल ग म सा कड़युक्त रे सा इस प्रकार आरोह में ऋषभ का अल्प प्रयोग ग्राह हो गया है, अतः इसकी जाति षाडव संपूर्ण मानना ही अधिक श्रेयस्कर है। मुझे यही मत मान्य है, अतः यहाँ पर इस राग का वर्णन इसी आधार पर किया गया है। पृष्ठ संख्या 87। कुछ लोग प्रस्तुत राग में ऋषभ का प्रयोग इस प्रकार करते हैं, यथा तार सा कोमल नी कोमल ध प म कोमल ग रे म कोमल ग रे सा इस भांति ऋषभ पर अर्ध विश्रांति करना मेरी राय में कौशिक कान्हड़ा के लिए सर्वथा अनुचित है। यद्यपि यह सत्य है कि संगीत में विविधता नवीनता उत्पन्न करने का मार्ग एवं साधन है, तथापि ऐसी विविधता व नवीनता उत्पन्न करना श्रेयस्कर नहीं है जिससे वास्तविकता का विनाश हो जाए। कौशिक कान्हड़ा में ऋषभ का उक्त प्रयोग कर मालकौंस और कान्हड़ा के मिश्रण से प्राप्त उत्तम परिणाम का विनाश करना है। यह सत्य है कि मालकौंस अंग के ही कौनसी कान्हड़ा में कुछ विद्वान चंद्रकौंस का मिश्रण करते हैं। यह एक आधुनिक प्रकार है, कतिपय विद्वान दरबारी का रंग अधिक उत्पन्न करते हैं तथा कोमल ध मंद्र मंद्र कोमल नीसा कोमल ग रेसा मंद्र कोमल ध या मंद्र कोमल नी रेसा। चूंकि यह कान्हड़ा से संबंधित है अतः यह खप जाता है, लेकिन उपरोक्त म कोमल ग रे तो काफी अंग ही उत्पन्न करता है जो इस राग के लिए उचित नहीं है, प्रत्युत इससे संगीत क्षेत्र में भ्रम ही उत्पन्न होता है, क्योंकि समाज का कोई भी ख्याति लब्ध गायक यदि इस प्रकार का प्रयोग करने लगता है तो लोग यह नहीं सोचते कि यह उचित है या अनुचित, उसका अनुकरण करने लग जाते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यहाँ पर उच्च कोटि के संगीत साधकों और मर्मज्ञों से नहीं है, प्रत्युत अल्प ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रकार अपनी धूर्तता से समाज में स्थान प्राप्त करने वाले कलाकारों से है। वस्तुतः जो विद्वान गायक हैं उनका अनुकरण तो परंपरागत है एवं ऐसे गुणीजनों का अनुकरण संगीत की सत्यता को स्थिरता प्रदान करता है। प्रस्तुत राग का स्वरूप इतना स्वतंत्र है कि इसका कोई संप्रकृत राग नहीं है, बस मिश्रण वाले रागों में ही आविर्भाव एवं तिरोभाव हुआ करता है। इसके लिए आवश्यक है कि गायक की राग ज्ञान की दृष्टि सूक्ष्म हो, तभी समुचित दृष्टि से आविर्भाव एवं तिरोभाव करना संभव हो सकेगा। स्वरों का प्रयोग तथा स्थान। सर्वश्रेष्ठ स्वर षड्ज को प्रस्तुत राग में संवादित्व प्रदान किया गया है। ऋषभ का प्रयोग कान्हड़ा अंग से षड्ज के स्पर्श से होता है, यथा कोमल ग म सा कड़ियुक्त रे सा। कभी कभी मंद्र कोमल ध मंद्र कोमल नी सा कोमल ग रे सा मंद्र कोमल ध अ मंद्र कोमल नी सा प कोमल ग रे कोमल ग म सा कड़युक्त रे सा इस स्वर संगति के साथ आरोह में भी प्रयुक्त हो जाता है। मालकौंस अंग समक्ष आने से तो यह लुप्त हो जाता है, परंतु कान्हड़ा अंग से यह प्रकट होता रहता है। इस हेतु प्रस्तुत राग में न्यासहीन प्रयोग के कारण इसका स्थान अनाभ्यास अल्पत्व का है। गंधार इस राग में कान्हड़ा अंग से आंदोलित एवं मालकौंस अंग से आंदोलन रहित होकर प्रयुक्त होता है, यथा सा कोमल ग म ग म कोमल ध म प कोमल ग म सा कड़युक्त रे सा। वक्र तानों में वक्र के स्थान पर कभी कभी गंधार म कोमल ग रे सा इस भांति भी प्रयुक्त हो जाता है। साम की स्वर संगति में इसका लंघन भी होता है, परंतु पुनः बार बार मालकौंस और कान्हड़ा अंग से सामने आकर लंघन दोष को दूर कर देता है। इस कारण इस स्वर का अभ्यास बहुत ही स्पष्ट होता है। मध्यम का प्रस्तुत राग में आंशिक एवं संपूर्ण न्यास बहुत्व है। मध्यम का प्रयोग भी आरोह अवरोह दोनों में ही स्वतंत्र रूप से होता है, यथा सा कोमल ग म कोमल ग म कोमल ध म कोमल ध कोमल नी प म कोमल ग म रे सा मंद्र कोमल ध मंद्र कोमल नी सा इत्यादि। पंचम इस राग में न्यासहीन तथा अल्प होने पर भी उत्तरांग में मालकौंस अंग को ढकने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर है, यथा मंद्र कोमल नी सा कोमल ग म कोमल ग म कोमल ध म। इस भांति मालकौंस अंग की अधिकता होने पर प कोमल ग म कोमल ध कोमल नी म कड़युक्त प म इस प्रकार पंचम समक्ष आकर मालकौंस को ढकता रहता है। मंद्र कोमल नी सा कोमल ग म प व मंद्र कोमल नी सा म कोमल ग म प पंचम का इस प्रकार का न्यास एवं लगाव कभी नहीं प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भीम पलासी राग का दर्शन होने लगेगा। जब भी पंचम का प्रयोग करना हो प्रथमतः धैवत को समक्ष लाकर फिर पंचम पर आना चाहिए, यथा मंद्र कोमल नी सा कोमल ग म कोमल ग म ध अ म प कोमल ग म प कोमल ग म कोमल ध कोमल नी कोमल ध म प कोमल ग म सा कड़युक्त रे सा। पंचम का यह विशिष्ट प्रकार का लगाव ध्यान देने योग्य है। क कभी कभी आलाप में कोमल ग म कोमल ध कोमल नी कोमल ध म कड़ियुक्त प म एवं द्रुत तानों में तार सा कोमल नी कोमल ध प। इस प्रकार सीधा व सरल प्रयोग भी होता रहता है। इस प्रकार इस राग में पंचम का अनाभ्यास अल्पत्व तो है ही, साथ ही राग विस्तार में इसका दीर्घ बहुत्व भी दृष्टिगोचर होता है। पृष्ठ संख्या 88। धैवत व निषाद का प्रयोग इस राग में म कोमल ध कोमल नी तार सा कोमल ध कोमल नी कोमल ध म इस भांति बराबर होता है। कभी कभी उत्तरांग में कान्हड़ा अंग दिखाने के लिए धैवत को वक्र करके लगाते हैं, यथा कोमल ध कोमल नी तार सा कोमल ध कोमल नी म कड़युक्त प म। राग में दोनों स्वर न्यासयुक्त तो नहीं हैं, परंतु अधिक प्रयोग होने के कारण राग में इसका अभ्यास बहुत्व का स्थान अवश्य है। इस प्रकार इस राग में दो महत्वपूर्ण रागांगों का समावेश होने के कारण प्रत्यक्ष ही दो रंगों की माधुर्यपूर्ण स्वर संगतियों का रसास्वादन होता है। यह भक्ति रस प्रधान एवं गंभीर प्रकृति का राग होने के कारण गायक वादक एवं श्रोता सभी के लिए अपने आनंदमय स्वरूप के माध्यम से आनंदित करने वाला है। आरोह मंत्र कोमल नी सा कोमल ग म कोमल ध कोमल नी तार सा। अवरोह तार सा कोमल नी कोमल ध प म म कड़युक्त कोमल ग अ रे कोमल ग म सा कड़युक्त रे सा। मुख्य स्वर समूह कोमल ग म कोमल ध कोमल नी कोमल ध म प कोमल ग म कड़युक्त रे कोमल ग म सा कड़युक्त रे सा।